ये आकाशवाणी है। अब आप शशांक कुमार से समाचार सुनिए। छत्तीसगढ़ में आज दो विभिन्न घटनाओं में 30 माओवादी मारे गए। माओवादियों के साथ मुठभेड़ में जिला रिजर्व गार्ड का एक जवान भी शहीद हो गया। बस्तर संभाग में बीजापुर और दंतेवाड़ा जिले में सीमावर्ती क्षेत्र में जंगलों में दो माओवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने पर सुरक्षा बलों की एक संयुक्त टीम तलाशी अभियान पर थी। मुठभेड़ स्थल से बड़ी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद किया गया। इलाके में तलाशी अभियान अभी भी जारी है। वहीं छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के एक अन्य अभियान में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच गोलाबारी में 4 माओवादी मारे गए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार नक्सलियों के खिलाफ सख्ती से आगे बढ़ रही है। श्री शाह ने कहा कि सरकार उन उग्रवादियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है जो तमाम सुविधाएं दिए जाने के बावजूद समर्पण नहीं कर रहे हैं। श्री शाह ने कहा कि नक्सल मुक्त भारत अभियान की दिशा में आज जवानों को एक और बड़ी सफलता मिली है। गृहमंत्री ने कहा कि अगले साल 31 मार्च तक देश नक्सल मुक्त हो जाएगा। गृह राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी ने आज कहा है कि केंद्र सरकार किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। उसने वर्ष 2014 से इसके लिए कई कदम उठाए हैं। नई दिल्ली में श्री चौधरी ने कहा कि सरकार ने पीएम किसान निधि को लागू किया है और फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है। पंजाब पुलिस ने संभू और खरौनी बॉर्डर से प्रदर्शनकारी किसानों को हटा दिया है। पंजाब पुलिस ने संभू बॉर्डर के पंजाब की तरफ से बचे हुए अस्थायी ढांचों को हटाने का काम फिर से शुरू किया। उधर हरियाणा पुलिस ने भी बैरिकेड हटाने का काम शुरू कर दिया है। शंभू अंबाला रोड को साफ करने के लिए कंक्रीट के अवरोधों को हटाने के लिए जेबीसी मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बीच पंजाब में उद्योगपतियों और लोगों ने किसानों को हटाए जाने का स्वागत किया है। हालांकि अभी राजमार्ग वाहन आवागमन के लिए खोला नहीं गया है। फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य और कुछ अन्य मांगों को पूरा करने को लेकर किसानों द्वारा विरोध प्रदर्शन के कारण दोनों बॉर्डर एक वर्ष से अधिक समय से बंद थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली में माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स के साथ चर्चा की। बैठक का उद्देश्य भारत के नवाचार और जैव विनिर्माण के वृद्धि के लिए निजी क्षेत्र तथा स्टार्टअप की भागीदारी का विस्तार करना था। डॉ सिंह ने कहा कि देश में जैव प्रौद्योगिकी नवाचारों में वृद्धि देखी गई है जिसे अर्थव्यवस्था रोजगार तथा पर्यावरण के लिए बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी जैसी नीतियों का समर्थन प्राप्त है। श्री गेट्स ने भारत की जैव प्रौद्योगिकी प्रगति की प्रशंसा की। देश में अनुमानित बेरोजगारी दर 2017-18 के दौरान 6% से घटकर 2023-24 में 3.2% हो गई है। श्रम और रोजगार राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने राज्यसभा में कहा कि विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार 2021-22 में 6.10 करोड़ से बढ़कर 22-23 में 6.30 करोड़ हो गया, जो इस अवधि के दौरान 20 लाख से अधिक की वृद्धि को दर्शाता है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ने इस वर्ष जनवरी में 17,89,000 सदस्य शामिल हुए हैं। यह दिसंबर 2024 की तुलना में कुल सदस्यों में 11.48% की वृद्धि है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने इस वृद्धि का श्रेय रोजगार के बढ़ते अवसरों, कर्मचारियों के लाभों के बारे में बढ़ती जागरूकता और संगठन की प्रभावी जनसंकल्प पहलों को दिया है। उत्तराखंड में चार धाम यात्रा के लिए पंजीकरण आज से शुरू हो गया है। इस वर्ष पंजीकरण का प्रमाणीकरण आधार से होगा। कुल पंजीकरणों में से 60% पंजीकरण ऑनलाइन होंगे और 40% ऑफलाइन किए जाएंगे। पारसी नववर्ष का त्यौहार नवरोज आज मनाया जा रहा है। शांति और समृद्धि का ये पर्व पारसी समुदाय का सबसे प्रमुख त्यौहार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री मोदी ने कहा है कि ये विशेष दिन सभी के लिए खुशियां, समृद्धि और अच्छा स्वास्थ्य लेकर आए। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने आज खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का शुभारंभ नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में किया। श्री मांडविया ने देशभर में खेलों के विकास को बढ़ावा देने में खेलो इंडिया पहल को महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के अंतर्गत देश में खेलों के बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास किया जा रहा है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। इन खेलों में 1200 से अधिक खिलाड़ी 6 खेलों तीरंदाजी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, पावरलिफ्टिंग, निशानेबाजी और टेबल टेनिस में खेलेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।